आज उस नारी को देख करके प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगा कौन सा हमारे कुटुंब खानदान को। वह सेठ आगे बढ़कर के बंधुओं सोते हुए बसंत को और नदी में पटक देता है और एकदम से चादरा खींचा है। ए बेटी हो जाओ, पिताजी आप यहाँ कैसे, मेरे पिया कहाँ है?
अरे पगली,
तेरो पिया
हमें का पतो कहाँ
है? ऐसे कर तो छोड़ के चलोगो?
नहीं, ऐसा हो नहीं हो सकता है पिताजी।
तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो?
अरे पगली
देख, अब तो हमारा तेरा रिश्ता
कछु हो रही है।
आंखें खोल, होश में आ जा।
नहीं 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 पिताजी,
आप समझो।
ओ ससुर जी अपने किया बहुत ही पाप, तुम बेटा पटुके नदी में सो भले पिता हैं आप।
आप कैसे पिता हैं? मुझे मालूम होता है आपने मेरे पिया को नदी में डाल दिया।
बोले
क्यों आंसू बह रही है, छोड़ दे उसकी प्रीत को, वो मेरा कोई खास लड़का नहीं था
और अब तो तू मेरी रानी कहलाएगी। बोले नहीं,
अब तो बच सकते नहीं पिताजी, कुछ देर के मेहमान हैं। दीन बंद भगवान ही, मैं अब आपने मरने नदी,
हे प्रभु
मैं आपने मरने नदी, छोड़ा मेरा अब हाथ है, जीवन कटेगा कैसे मेरा, अब बतलाओ किसके साथ है।
अरे पगली ये क्या आंसू बहाना, छोड़ एक बार तू हमसे पिया कह देना, तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बोले नहीं पिताजी, मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने सतीत को नहीं जाने दूंगी।
देख
बेटा नहीं नौकर था वो,
इधर देख,
बेटा नहीं नौकर था वो, मरने से पीछा छुट गया, अब तेरा मेरा पति पत्नी का पक्का रिश्ता जुड़ गया।
नहीं पिताजी,
मर जाऊंगी लेकिन मैं आपसे पिया नहीं कहूंगी।
सेठ जी क्यों मारी गई तुम्हारी मती?
सेठ जी क्यों मारी गई तुम्हारी मती?
रूप बसंत का किस्सा सुना देगा, वही है मेरा पति।
आप रूप बसंत का किस्सा जानते हो?
बोले
रूप बसंत एक किस्सा ही कह रही है।
इधर देख,
तोता मैना को सुन ले
ना,
हीर राने का सुन ले
ना,
अरे सीरी फरियाद का सुन ले तोता मैना, और तोता मैना को तुम ना सुन रही
और हीर राने का भी नहीं सुन रही है, तो सीरी फरियाद का सुन ले।
बोले नहीं
पिताजी, मुझे रूप बसंत का किस्सा चाहिए।
आज मेरे प्रिय श्रोता हो क्या कहने लगी हम?
छह महीने से प्रथम करो तंग तो प्राण गमाऊं, ए धर्म नुहारो कभी मैं देखिया तुम घात कराऊं।
मर जाऊंगी, शरीर से हाथ मन लगा देना।
Thank you.
का मेरा तुम्हारा करार है और 6 महीने के अंदर तुम मुझे किस्सा सुनवा दी। अन्यथा 7वां महीना लगा तो समझ लो फिर भी तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण गंवा दूंगी।
सेठ बोला मरे मत,
चल तू रूप बसंत कोई किस्सा सुनेगी तो 6 महीना तो भी बहुत दूर है। आज बंधु देखिए, जो बसंत को नदी में डाला था वह बसंत वहां से बहता हुआ और मिश्रा देश के नगर के आकर के समीप जब किनारे से लाश ले जाती उसको होश आया तो आज देखा है तो सामने नगर है और पहुंच जाता है कहां धोबी धोबिन किया। अचानक पहुंचा दिनों के बाद तो एकदम से धोबी बोला बेटा बेटा तू आ गया। हाँ दादा मैं आ गया, इतने दिन कहां रहे। दादा वो सेठ मुझे कपड़ा धोबे तोरी ले गो, वो तो मैं बलि चढ़ान ले गया था और दादा खुशी मना ले मेरे ब्याह है गा। वो ए लला बहू कहाँ है के बहू तो वह सेठ ने छुड़ा ले तो रत तेरे की तो तब ब्याह तो काय को भो। हाँ हम तो जाने के हमारे का बहू लेके आओ तो बड़ी खुशी की बात थी। अम्मा जो कहा अब चलो फिर ना जा तो रोटी ना होती वहां पर। दादा को बात ना मैं करके खबांगो में आ गई तो मेरे प्रिय श्रोता हूँ आज झाज आकर के मिश्रा देश के नगर से वही घाट पे आयो और झाज अपने आप बंद हो जाता है। तो मेरे प्रिय श्रोता हूँ सेठ ने मन में सोचा कि शायद हो सकता है यहाँ किस्सा मिल जाए इस नगर में, राजा से फरियाद करूं क्योंकि यह हमारी तो भेजा गई। आहा बंधु अरे बात सुनी रे जब सौदागर की, अरे पंचो सुनियो जो हाल लगाई, दरा दरा चलो फेर दिया दरबारन में पहुंच जाई। हाथ जोड़े कर दिन करी तब राजा सुन लो काना सुनता दिए सुनाई। अरे जो कोई किस्सा हमें सुनावे ताकू आदि राज गहाए। इस प्रकार से आज रूप कुमार ने कहा कि भैया जनानी प्रधान सारे शहर में ढोड़ी पिटवा दो, जो कोई रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा हम उसको आदिराज इनाम में देंगे। आज बंधुओं जब ढोड़ी पिटवाई है जनानिया प्रधान ने तो घर में नगर निवासी सुनते हैं, और उसी समय दरमियान मिश्रा देश में उनके चाचा धीर सिंह जो महात्मा का भेष था उस ढोड़ी की आवाज वो भी सुनते हैं कि जो कोई रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा वो हमारे राजा की तरफ से आदिराज इनाम में पाएगा। तो आज बंधुओं धीर सिंह सोचने लगे धन्य है प्रभु, बेटों से मिलन तो नहीं हुआ, शायद आज किस्सा से ही धीर बन जाएगी, इस किस्सा को तो हम भी सुनना चाहते। आज रात जाकर के राजा की कचहरी में यानी दरबार में जाके बैठ जाते हैं धीर सिंह। बंधु इधर में रूप बसंत को किस्सा कोई जानत नहीं, अब जाके जो बंधु जो उन्होंने सुना है बसंत ने जो धोबी धोबिन के यहां रह रहा था, तो बसंत कहने लगा दादा बोले बनेगो काम काय का बात है बेटा कैसो काम बनेगो कि देखो जो जनानिया प्रधान जो ढोड़ी पीट रहा है ना कि जो कोई रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा वो आदि राज नाम में पाएगा। दादा अब तुम ऐसा करो तुम राजा है क्यों बेटा, हमें अचानक ही राजा कैसे गए तुम है गए अब तो अम्मा हमारी रानी है गई बेटा कैसे के दादा देख रूप बसंत को किस समय जानता हूं और छाती ठोक के राजा से कह दो कि महाराज हमारे बेटे की बहू रूप बसंत का किस्सा सुनाएगी और अपने झोपड़ी ते हमारे महलन तक कनात को इंतजाम करवाएगी। तो भी बोला तो दिमाग खराब है का राजा के महल में झोपड़ी बता रहे ए दादा एक बात बता जिनमें हमें रहनो ही ना है तो हमारे क्या तो झोपड़ी के वहां फेंके हम झोपड़ी में रहे तो हमारा तो महल है जी। बेटा बात तो तू सही कर बहुत होशियार है बहुत साल भर बाहर रहो है ना प्रेमचंद के संग चलोगे वो आ भैया। इसी प्रकार से धोबी ने जाकर के कहा महाराज किस्सा हमारे बेटे की बहू सुनाएगी और अपने महलन से झोपड़ी तक इंतजाम करा दो कनात का पर्दे का। बोले ठीक ऐसा ही होगा। बंधु देखिए राजा का ऑर्डर आज बंधु जब राजा ने ऑर्डर दिया है तो कनात का इंतजाम करवाया गया। अब धोबी आके बोलो अरे बेटा तेरी बहू तो जाजमे बहू को बनेगा ये दादा तू काय बात चिंता कर बहू मैं बनूंगा तभी तो मेरे पर्दा को इंतजाम करवाओ ए लला तू बहू बन जातू है दादा बन जाते जब भक्त पर तू है तो ठीक। आज मेरे प्रिय श्रोता हो कैसा ये रूप बसंत का कनात में से और बसंत ही इस किस्सा को बैठ करके और कहता है। इधर में उनके चाचा भी वही बैठे थे सारी प्रजा थी और किस प्रकार से किस्सा कहता है। और यह भी कहा था राजा ने कि जो कोई किस्सा के बीच में ब्यादा करेगा उसे सूली का हुक्म होगा। किस्सा शुरू होता है बंधु और कैसे किस्सा को कह रहा है अरे धारा नगरी गाम हमारो तुम कूते था पाल पराश के श्याना बनाया। इधर धीर सिंह की सलाह से कैसे बता रहे हो बेटा, धीरे धीरे आज ये प्रजा सुनती है
तो जहां तक कहानी पहुंचती है तो आंखों से आंसू बहाने लगी है प्रजा। अब देखिए इधर क्या होता है। अरे खेलो जो खेला मेरे भैया, महला ने ढिंगा तो बचाई रे। अरे तोलो गलो जब गेंदा में भैया, मौसी महला में जाई रे। अरे गेंदा ले लको रूप कुमर तब महला ने पहुंचा
ख्याल आया तो है कहानी बिल्कुल सत्य है। हाँ हाँ भैया, और उस शेर को मारने के लिए हुक्म दिया था जो शहर के रोज राजाओं को खा जाता था, यानी रोज बच्चों को खा जाता था। तो राजा रूप कुमार हो गए हैं, जनान्य प्रधान लोम में आकर के बसंत को मार देता है और नदी में डाल देता है। बंदो बसंत कुमार को धोबी ले जाता है, धोबी के यहाँ बसंत रहने लगता है। एक दिन क्या होता है कि सेठ आता है और बसंत कुमार को कपड़ों के बहाने वहां से ले जाता है। सेठ के यहाँ उसकी शादी होती है। आहा, तो उस सेठ की नीयत खराब हो जाती है रानी को देख करके। तो बसंत को नदी में डाल दिया गया, और लेकिन उसकी घरवाली ने जो वचन लिया था कि जो कोई रूप बसंत का गुस्सा सुना देगा वही मेरा पति होगा। इस खातिर आज ये किस्सा हो रहा है। तो जब सेठ को ना आओ, सेठ बोले जो किस्सा बंद कर दिया जाए। राजा बोले फांसी हो जाएगी, बैठ जाओ। जनानिया प्रधान को ना आओ तो उन्हें कहे कि जो किस्सा बंद कर दी है। बोले कुछ नहीं, बैठ जाए तुमको फांसी होगी। अब आहा भैया, अब देखो इधर में आगे किस्सा बढ़ता है, ध्यान देकर के सुनिए। रूप बसंत को किस्सा सुना दे वही पति कहलाई रे। आ भैया, इधर में चाचा धीर सिंह बैठे हैं जो आज उनकी हिलकी बन रही है। हाँ सुनी तो हरा बहाई रे। करने के इस जनानी आवाज तो यह है नहीं है। दो भी दो मिनट को खड़ा कर दिया गया और कहा कि एक बार अपनी बहू से कह दो वो दरबार में खुल के आए, मैं देखना चाहता हूं।
पर्दा हटा दो जब मेरे भैया बसंत पढ़ो लखाई रे, अरे गद्दी पे तो ठाड़ो है गो अमर रूप गयो भेदाई रे, और जेट भर लाई जब भैया की इत चाचा पढ़े लखाई रे,
अरे भज के दोनों भैया चाले चाचा ढिंग गए आई रे। आज बंदे इस प्रकार से तीनों प्राणी भरी कचहरी में मिलते हुए चंद प्रवाह बसंत की घरवाली आकर के कहती है पिया आप
हाँ
अब सेठ जी के भैया वह भोए चले गए। इस प्रकार से बंधु जनानिया प्रधान को और इधर में सेठ को हाँ फांसी लटकाए हो गया। इधर यहाँ का राजा मिश्रा देश के तो रूप कुमार बनी चुके थे लेकिन चाचा आज लौट करके धारा नगरी में पहुंचते हैं। जब तक क्या होता है कि रानी आंखों से अंधी हो जाती है और राजा बहुत वृद्ध हो जाते हैं। जाकर के बंधु अब जब अपने माता पिता से मिले हैं तो यहाँ मौसी बड़ी लज्जामान होती है, बेटा मुझे माफ कर दो, उस समय जवानी का जोश था और मैं भूल गई थी और उसका पश्चाताप आज मुझे भोगना पड़ रहा है। तो बंधु आज धारा नगरी का राजा बसंत कुमार को बना दिया गया है और राज तिलक करके राजा रानी दोनों जंगल के लिए चले जाते तपस्या करने के लिए। ये किस्सा हमारा राठौर कैस्ट के माध्यम से आपने सुना, मुझे इसको यहीं समाप्त करता हूँ। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।